ओम शांति। बहुत सुंदर गीत अभी हमने सुना, समय का पंछी उड़ता जाए वो कभी किसी के हाथ नहीं आता है, और समय का ही विशेष महत्व होता है हर इंसान के जीवन में। जब भी कोई कार्य करना होता और समय पर अगर कर लेते हैं, समय पर अगर सही निर्णय ले लेते हैं, तो जीवन में इंसान आगे बढ़ जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति के लिए जीवन में अगर समय का महत्व नहीं है, तो वो जीवन में कभी प्रगति नहीं कर पाता, उन्नति नहीं कर पाता। बाद में उसको पश्चाताप के सिवाय कुछ नहीं मिलता है। इसलिए समय के साथ हमारा बहुत गहरा कनेक्शन है। समय के साथ ही जीवन का खेल चल रहा है, ये संसार का नाटक चल रहा है, संसार की ये लीला कहो, संसार का ड्रामा कहो, संसार का चक्र कहो, ये सब समय के साथ साथ चल रहा है। और वो समय को समझना अति आवश्यक है, क्योंकि जिसने समय को ही नहीं समझा, समय उसके लिए बड़ा कठोर हो जाता है। और अच्छे अच्छे व्यक्ति को भी पछाड़ना आरंभ कर देता है। इसलिए समय को जानना आवश्यक हो जाता है। अब तक के जो भी विषय आपने सुने, वह योग से संबंधित विषय थे, परंतु अभी का जो विषय है वो जीवन के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ है, आध्यात्मिकता का यथार्थ प्रयोग जीवन में अगर करना हो, तो इस सत्र को के अंदर जो गुह्य बातें समाई हुई है उसको समझने के आधार पर कर सकते हैं। संसार में दो बातों की गुह्य गति मानी गई है, एक समय की गुह्य गति और दूसरी है कर्मों की गुह्य गति। ये दो गुह्य गति को जिसने समझ लिया, वो संसार में जीने की कला सीख लेता है। नहीं तो कई बार हम देखते हैं कि मनुष्य के जीवन के अंदर कई ऐसे मोड़ आते हैं, कई ऐसी परिस्थितियां आती है कि जब व्यक्ति उदास हो जाता है, दिल शिकस्त हो जाता है, और उस वक्त उसके मन के अंदर एक ही प्रश्न बार बार उत्पन्न होता रहता है कि हम किसी का बुरा नहीं करते, न किसी का बुरा चाहते हैं, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, हमारे साथ ही ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है। और उस वक्त जब उसका उत्तर नहीं मिलता है, तो और भी व्यक्ति हिम्मतहीन होने लगता है जीवन के अंदर। तो ये प्रश्न का जवाब आज के इस सत्र में मिलेगा कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन जैसे कहा, उसके लिए समय की गुह्य गति को जानना आवश्यक है, क्योंकि समय हमें समय प्रति समय कुछ न कुछ कहता है। इसलिए संसार में यही कहा गया है कि समय बड़ा बलवान है, समय के आगे किसी का जोर नहीं चलता है। और समय हमको समय प्रति समय जो सिग्नल देता है, जो संकेत देता है, वो संकेत बहुत गुह्य रहस्य भरे होते हैं। उसको समझ लेना आवश्यक होता है कि ये समय हमें क्या संकेत दे रहा है। कोई परिस्थिति अगर जीवन के अंदर बार बार आ रही है, विभिन्न रूप से आ रही है, तो वो वास्तव में हमें कुछ न कुछ संकेत दे रहा है। लेकिन जो व्यक्ति इन संकेतों को समझ नहीं पाता है, या अगर समझते हुए भी उसको इग्नोर करने लगता है, तो वो समय फिर बड़ा कठोर हो जाता है और बड़ा दर्दनाक अनुभव कराता है। इसीलिए कहा हुआ है कि समय हमसे समय प्रति समय एक परिवर्तन की मांग करता है, क्योंकि समय तीव्र परिवर्तन का है। समय के साथ साथ हमें भी अपने जीवन के अंदर परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। अगर समय के संकेतों को समझते हुए हमने जीवन के अंदर उस अनुसार परिवर्तन को अपना लिया, तो समय हमें आगे बढ़ा देता है। लेकिन अगर समय से विपरीत दिशा में चले और परिवर्तन अपनाने के बजाय प्रतिकूल दिशा को अपना लिया जाता है, तब समय अच्छे अच्छे को पछाड़ना शुरू करता है, जिसको कई बार दुनिया देखती भी है कि देखो इस वक्त इसका समय कैसा चल रहा है, इतना पछाड़ रहा है समय उसको। इसलिए इंग्लिश में कहा जाता है, इफ यू कैनॉट चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम विल फोर्स यू टू चेंज। समय के साथ अगर परिवर्तन को नहीं अपनाया गया, तो समय हमें परिवर्तन होने के लिए मजबूर करेगा, और वो समय बड़ा दर्दनाक होगा, क्योंकि इच्छा है नहीं परिवर्तन करने की और समय की मजबूरी है, करना पड़ रहा है, तो वो समय बड़ा दर्दनाक होता है। इसलिए समय के संकेत को समझ करके उस अनुसार परिवर्तन को अपना लेना चाहिए। लेकिन अगर इतना विपरीत समय आने के बाद भी अगर हम नहीं समझ पाते हैं, तो समय काल का स्वरूप तो क्या महाकाल का स्वरूप भी धारण कर लेता है, और समय उस व्यक्ति के अस्तित्व को नष्ट कर देता है। वो जीने के लायक ही नहीं है, ऐसे कहा जाता है, इफ यू कैन नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम विल किल यू, समय आपका नष्ट कर देगा। इसलिए समय क्या कह रहा है, समय का पंछी तो उड़ता जाता है, कभी किसी के हाथ नहीं आता, लेकिन समय के साथ साथ इस संसार के अंदर हर चीज परिवर्तनशील है। इसलिए कहा परिवर्तन ये कुदरत का नियम है, इस परिवर्तन को समझने की आवश्यकता है। समय का चक्र कहा हुआ है, ये चक्र कैसे चलता है, इसकी गति को भी समझना है। समय के साथ साथ कुदरत के अंदर जितने भी बने हुए चक्र है, कोई भी चक्र बंद नहीं होता है, सभी नित्य चलता है। चक्र माना ही जो नित्य चलता हो, जैसे दिन और रात का चक्र है, नित्य चलता रहता है। इसी तरह ऋतुओं का चक्र है, नित्य चलता रहता है। मनुष्य जन्म पुनः जन्म का चक्र है, वो भी नित्य चलता रहता है। कुदरत के साइकिल को अगर देखें, पानी इवेपोरेट होता है, बादल बनते हैं, वो बादल बरसते हैं, फिर वो पानी नदियों के द्वारा सागर में मिल जाता है, ये चक्र भी नित्य चलता रहता है। कोई भी चक्र की आदि और अंत नहीं है। दिन और रात का चक्र कब शुरू हुआ था पता ही नहीं, नादि है ना अंत है। ऋतुओं का चक्र कब शुरू हुआ था, ना आदि है ना अंत है, लेकिन हर चक्र को चार अवस्था से अवश्य गुजरना पड़ता है। जैसे दिन और रात के चक्र में भी चार अवस्था है, सुबह दोपहर शाम और रात्रि, रात्रि के बाद पुनः सुबह आती है। दूसरा, ऋतुओं के चक्र में भी देखो चार ऋतु होती है साल में, ग्रीष्म, बरसात, शीतकाल, बसंत, फिर ग्रीष्म आ जाता है। मनुष्य जन्म पुनः जन्म के चक्र में भी चार अवस्था है, जिसको कहा बचपन, युवा, गृहस्थ, वृद्ध। और ये काल चक्र में भी चार अवस्था है, जिसको हम कहते सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग के बाद क्या होगा, पुनः सतयुग आएगा, क्योंकि ये चक्र है। हर चक्र नित्य चलता रहता है। ये नहीं कि कलयुग के बाद एक महाविनाश आएगा, सब प्रलय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और फिर बहुत समय के बाद फिर सतयुग शुरू होगा। नहीं, जिस प्रकार दिन और रात का चक्र है, नित्य चलता है, पता ही नहीं चलता है कब सुबह हो गई। कई लोग सोचते हैं कि इतना घोर पापाचार का युग कलयुग सतयुग में कैसे बदल जाएगा। कोई मनुष्य का कार्य नहीं है, ये कुदरत का कार्य है। जिस प्रकार घोर अंधेरी अमावस्या की रात सुनहरी सुबह में अपने आप बदल जाती है, कोई व्यक्ति का कार्य नहीं है, इस प्रकार घोर अंधेरी पापाचार की दुनिया भी सतयुग में अपने आप बदल जाता है, कोई व्यक्ति का कार्य नहीं है ये। लेकिन हर चक्र को एक अवधि जरूर है, जिस अवधि में ही उसको वो चक्र को पूरा करना होता है। जैसे दिन और रात के चक्र की अवधि है 24 घंटे, उसी में ही ये चक्र कंप्लीट होता है। इसी तरह ऋतुओं का चक्र एक साल में कंप्लीट होता है 365 दिन में। इसी तरह ये काल चक्र की भी अवधि है 5000 साल। परंतु जब ये 5000 साल सुनते हैं तो मनुष्य के मन के अंदर अनेक प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं कि ये 5000 कहां से आए, किसने कहा, कहां से आया, कहां लिखा हुआ है, क्या सबूत है कि 5000 साल का चक्र है। शास्त्रों में तो लाखों साल लिख दिए, लाखों साल का कोई सबूत है? कोई सबूत नहीं। उसको भी स्वीकार ही कर लिया ना, पढ़कर के स्वीकार कर लिया। वैसे 5000 साल का सबूत है। अगर मैं एक ही सवाल आपसे पूछूं, 24 घंटे का कोई सबूत है? 24 घंटे कहां से आए? 60 सेकंड की एक मिनट बनी और 60 मिनट का एक घंटा बना, ऐसे 24 घंटे बना दिए। लेकिन जिसने भी कैलकुलेशन किया, वो 60 फिगर कहां से ले आया? अगर 50 सेकंड की एक मिनट बनाता था तो नहीं चलता था, 50 मिनट का एक घंटा बनाता था तो नहीं चलता था? चलता ही था, घंटे 25 हो जाते थे शायद। या अगर 100 सेकंड की एक मिनट बनाता था तो नहीं चलता था? 100 मिनट का एक घंटा बनाता था तो भी नहीं चलता था क्या? चलता ही था। लेकिन जिसने भी कैलकुलेशन किया, वो 60 फिगर कहां से ले आया, कभी किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा, स्वीकार कर लिया। 24 घंटे के दिन और रात तो परिवर्तन होने वाले नहीं थे, वो तो उतना ही रहना था ना। चाहे उसको 24 घंटे में बांटो, 25 घंटे में बांटो या 20 घंटे में बांटो, वो तो उतना ही रहना था, वो तो कम जास्ती होने वाला नहीं था ना। लेकिन कभी हमने ये सवाल नहीं पूछा, ये 24 घंटे कहां से आए, क्या सबूत है, किसने कहा, कहां लिखा हुआ है। नहीं, स्वीकार कर लिया। साल का चक्र 365 दिन का किसने कहा? विज्ञान ने कहा कि साल का चक्र है 365 दिन का, पृथ्वी को चक्कर लगाने में इतना समय लगता है, इसलिए साल का चक्र उस हिसाब से हमने बना दिया और हमने स्वीकार कर लिया और सारा इंग्लिश कैलेंडर उसके आधार पर बना दिया। कभी कोई प्रश्न नहीं पूछा, कोई सबूत नहीं मांगा। अगर हिंदू कैलेंडर को देखा जाए तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से साल में कितने दिन होते हैं? कितने दिन होते हैं? 3 साल के बाद अगर अधिक मास आता है तो साल में कितने दिन होंगे? 354 दिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। अब हिंदू कैलेंडर सही है या इंग्लिश कैलेंडर सही है? क्योंकि हिंदू कैलेंडर भी जो बना है एक साइंस पर बना है, और उस जमाने का साइंस, जब विदेशी लोगों के पास जीरो तो कैलकुलेशन करने के लिए था ही नहीं, भारत के पास ही जीरो था जिसके आधार पर कैलकुलेट करके उन्होंने बनाया 354 दिन। और भारत ने जब जीरो दिया विश्व को, तब उन्होंने मॉडर्न साइंस को भी डेवलप किया और तब अपने कैलकुलेशन पर उन्होंने कहा 365 दिन। अब सही कौन सा है, 365 सही है या 354 सही है? कभी हमने सबूत मांगा? दोनों कैलेंडर लेकर चल रहे हैं। दुनिया का कारोबार इंग्लिश कैलेंडर पर चला रहे हैं, अपने त्योहार मुहूर्त जो निकालना हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। ये तो कभी किसी ने नहीं कहा कि मॉडर्न कैलेंडर ने अगर कहा, मॉडर्न साइंस ने अगर कहा कि साल के 365 दिन है इसलिए हिंदू कैलेंडर को फाड़ के फेंक दो, आउटडेटेड हो गया। नहीं, और ये भी नहीं कहते कि हिंदू कैलेंडर सही है इसलिए इंग्लिश कैलेंडर को फाड़ के फेंक दो, क्योंकि कोई सबूत ही नहीं है हमारे पास और दोनों कैलेंडर लेकर के हम चल रहे हैं। जबकि आज भी कहा जाता है कि जब अधिक मास होता है तो बरसात अपने समय पर आती है, और ठीक अपने समय पर ही आती है। इंग्लिश कैलेंडर में कोई प्रेडिक्शन नहीं है, पता ही नहीं चलता है। तो परफेक्ट कौन सा हुआ? हिंदू कैलेंडर हुआ। फिर भी हम इंग्लिश कैलेंडर लेकर चल रहे हैं ना। तो 365 सही है, 354 सही, उसके लिए कोई सबूत नहीं है। 24 घंटे कहां से आए वो उसके लिए कोई सबूत नहीं है। 5000 के लिए सबूत मांगते हैं, लाखों साल का एक युग जब शास्त्र ने कहा उसका कोई सबूत नहीं है, उसको स्वीकार कर लिया और 5000 का सबूत मांगते हैं। अरे जहां से ये 24 घंटे आए, जहां से ये 365 354 आए, वहीं से 5000 भी आए। अगर उसको स्वीकार कर सकते तो इसको क्यों नहीं? वैसे 5000 साल का सबूत है हमारे पास, हर धर्म के अंदर 5000 का सबूत दिया हुआ है। हिंदू धर्म शास्त्रों के हिसाब से ही अगर देखा जाए तो महाभारत युद्ध को हुए कितने साल हुए? महाभारत युद्ध को हुए कितने साल हुए? 5000 साल। और उस महाभारत के लास्ट चैप्टर में ये लिखा हुआ है कि जब घर घर के अंदर महाभारत हो जाए तब समझना फिर से महाभारत काल आ गया। तो आज घर घर के अंदर क्या है? महाभारत चलता है या नहीं चलता है? हाँ, चलता है। महाभारत में जो वर्णित पात्र है, शकुनी जैसे पात्र आज के समाज में देखने को मिलता है या नहीं मिलता है? हाँ, क्या कहेंगे? है शकुनी आज के समाज में? उस नाम से नहीं होगा, लेकिन शकुनी तो है कि नहीं है? हर मोड़ पर एक शकुनी बैठा होगा, है ना? दुर्योधन जैसे पात्र, ऐसे बच्चे आज के समाज के अंदर देखने को मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? दुर्योधन माना जिसने धन का दुरुपयोग किया, ऐसे बच्चे आज के समाज के अंदर है, ऐसे पात्र है, है? और उसके बावजूद भी माता पिता पुत्र मोह में अंधे उस बच्चे को कुछ नहीं कह पाते हैं, ऐसे माँ बाप भी है धृतराष्ट्र और गांधारी जैसे कि नहीं है? तो 5000 साल हो गया ना कि नहीं हुआ? मुसलमान धर्म शास्त्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनके पवित्र धर्म पुस्तक में भी ये बात लिखी हुई है कि कयामत का समय हर 5000 साल में एक बार आता है, और उनके पवित्र धर्म पुस्तक के हिसाब से भी कयामत का समय आ रहा है, तो 5000 साल हो गया ना। क्रिश्चियन धर्म शास्त्र के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो उसमें भी बताया गया है कि क्राइस्ट के 3000 साल पूर्व देयर वॉज हेवन ऑन अर्थ, 3000 साल पूर्व और 2000 साल बाद नॉस्ट्राडेमस की भविष्यवाणी के हिसाब से द गोल्डन ईरा इज टू कम, तो 5000 हो गया ना। तो 5000 साल का वर्णन हर धर्म शास्त्र में किया हुआ है, है सबूत। लाखों साल का कोई वर्णन नहीं है, 5000 साल का वर्णन है। इसीलिए ये सृष्टि का चक्र, चारों युगों की जो कहानी है वो 5000 साल के ही अवधि में पूरी हो जाती है। सत्युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये चक्र किस प्रकार चलता है उसको दिखाया गया है स्वास्तिका के रूप में। स्वास्तिका हर शुभ कार्य के लिए लगाया जाता है, लेकिन अगर किसी से भी पूछा जाए ये स्वास्तिका का अर्थ क्या है तो क्या कहेंगे? एक शुभ की निशानी है, या कहेंगे हमारे पूर्वज करते आए इसीलिए हमें करना है? लेकिन स्वास्तिका शब्द ओरिजिनली संस्कृत के सुअस्ति शब्द से निकला है। सुअस्ति, सु यानी शुभ, अस्ति यानी जो है, जो सदा ही शुभ है। यानी ये काल चक्र में एक घड़ी भी ऐसी नहीं है जिसको हम कहे ये अशुभ है, ये बुरी है, ऐसी कोई घड़ी नहीं है। अशुभ कहना ये हमारी ज्ञान की पराकाष्ठा की कमी है, हमारे भीतर की अज्ञानता है जिसके कारण हम कहते हैं यह शुभ है। वास्तव में देखा जाए तो अशुभ जैसी कोई चीज इस संसार में है ही नहीं, जो सदा ही शुभ है। इसीलिए गीता के सार में भगवान ने ये बात कही है कि हे अर्जुन, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो भी अच्छा। तुम निश्चिंत रहो, कोई घड़ी बुरी है ही नहीं। जो बीत गई वो भी अच्छी है, जो बीत रही है वो भी अच्छी है, और जो आने वाली है वो भी बहुत अच्छी है। कोई घड़ी बुरी है ही नहीं। लेकिन तब मनुष्य कहते नहीं नहीं कभी कभी तो बुरा दिखाई देता है ना, बहुत बुरा हो रहा है, ऐसा महसूस होता है, उसको हम अच्छा कैसे समझे? तो एक बार की बात याद आती है कि एक बार एक भाई थे, उसका कार एक्सीडेंट हुआ और दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए। हॉस्पिटल में थे, जब हमें पता चला तो महसूस हुआ कि चलो जाकर के मिल के आए भाई को। जैसे ही वहां गए तो क्या कहेंगे, सहानुभूति के ही कुछ शब्द कहेंगे। तो हमने उस भाई से कहा, भगवान को याद करो, सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही ये बात कही, वो भाई को बड़ा गुस्सा आया, कहने लगे भगवान का नाम मेरे सामने नहीं लो, भगवान बहुत बुरा है, सबका बुरा करता है। बड़ा गुस्सा करने लगा, बड़ा आश्चर्य भी हुआ, इतनी भगवान में आस्था रखने वाला आज इसको क्या हो गया। और धीरे धीरे इतना भगवान के लिए बोल रहा था, बार बार एक ही बात कह रहा था, बहन जी मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अब उसका तो कोई उत्तर हमारे पास तो था ही नहीं, तो क्या कहते। धीरे धीरे महसूस होने लगा, जितना ज्यादा देर यहाँ खड़े रहेंगे ये भाई का गुस्सा बढ़ता रहेगा, भगवान को भी गाली देता रहेगा, इसलिए बेहतर यही है कि बाहर निकल जाए। हम बाहर आ गए तो उसकी वाइफ हमें आकर कहने लगी कि बहन जी कुछ उल्टा सीधा कह दिया हो तो आप क्षमा कर देना, इस वक्त आप इनके मानसिक स्थिति को समझने का प्रयत्न करना। हमने कहा इतना अच्छा भाई, भगवान में आस्था रखने वाले, फिर आज उनको क्या हो गया, एक कार एक्सीडेंट हुआ तो उसमें भगवान को इतनी गाली देने लगे। तो कहने लगी कि नहीं बहन जी ऐसी बात नहीं है। क्या बात है फिर? तो पता चला कि वो कोई लायंस का या रोटरी का गवर्नर था और उसने समाज के लिए कुछ बहुत अच्छा काम किया था और अब उसका टेन्योर पूरा हो रहा है। और जब उन गवर्नर्स का टेन्योर पूरा होता है तो कोई इंटरनेशनल गैदरिंग होती होंगी जहां सारी दुनिया के गवर्नर्स इकट्ठे होते होंगे, तो उस इंटरनेशनल गैदरिंग में उसको भी जाना था और वहां जाकर के उन्हें अवार्ड मिलना था, क्योंकि उसने कुछ बहुत अच्छा नवीन कार्य किया था तो इसलिए उसको अवार्ड मिलना था, उसका सम्मान होना था। लेकिन 10 दिन पहले उसको ये कार एक्सीडेंट हो गया। अब जा तो नहीं सकता है ठीक होकर के 10 दिन के अंदर, तो इसीलिए उसके मन के अंदर बार बार ये बात आ रही थी कि सारे दुनिया के इतने बड़े बड़े लोग वहां आए होंगे और मैं भी वहां जाता था, मेरा सम्मान होता था, मेरा फोटो निकलता था, और वहां से जब वापस में आता था यहां मुझे कैसे रिसीव किया जाता था, और अब कुछ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए वो बार बार कह रहा था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, कर्म मैंने किया और फल लेने का समय आया तो भगवान ने मेरे हाथ से फल क्यों छीन लिया। अब उसका तो कोई उत्तर था नहीं, 10 दिन में ठीक होकर के तो जाना नहीं था उसको, और इसलिए जब वो दृश्य उसके सामने बार बार आते थे तो उसमें और भी वो दुखी होता रहता था। हमारे सामने सामने किसी ने उसको कह दिया, अरे भगवान को क्यों गाली देता है, हर एक का कर्मों का हिसाब किताब भी तो अपना है ना, वो तो चुप तो करना ही पड़ता है। तो और गुस्सा हो गए और कहने लगे कि भाई हिसाब किताब में कहां मना करता हूं चुकतू करने के लिए, लेकिन वहां से आने के बाद हिसाब किताब चुकतू नहीं होता था क्या, पहले ही चुकतू करना था भगवान को। खैर हम तो वहां से निकल चले और 8-10 दिन के बाद गुरुवार का दिन था तो सोचा चलो बाबा का भोग लगा है, भाई के लिए थोड़ा भोग ले चलेंगे, हो सकता है भाई की मानसिक स्थिति थोड़ी ठीक हुई हो। तो जैसे ही हम गए तो बड़े खुश थे, हमें देखकर कहने लगे आओ बहन जी आओ, देखो भगवान जो करता है ना अच्छा ही करता है। क्या हुआ? तो न्यूज़पेपर उठाकर उसने दिखाया कि जिस फ्लाइट में वो जाने वाला था वो फ्लाइट क्रैश हो गया, सारे लोग मर गए। तो कहने लगे कि देखो बहन जी, इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा था वो, कहने लगा कि देखो बहन जी अवार्ड तो शायद मुझे मिलना ही नहीं था, लेकिन ये कोई कम अवार्ड है कि भगवान ने मुझे एक नया जीवन दान दे दिया, ये कोई कम अवार्ड है मेरे लिए? मैंने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, मैंने सबकी भलाई का काम किया है, इसीलिए भगवान ने मुझे कितना बड़ा अवार्ड दिया कि एक जीवन नष्ट होते हुए मुझे बचा लिया। इसलिए जब भी आपके जीवन में कोई घटना हो और उस समय ये प्रश्न उत्पन्न हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तो उसका जवाब क्या है? क्योंकि आपने किसी का बुरा नहीं किया, इसीलिए आपके साथ ऐसा हुआ, नहीं तो पता नहीं क्या होने वाला था, वो आप जानते नहीं है। बहुत बड़े रूप में होने वाला था, उसके बदले क्योंकि आपने किसी का बुरा नहीं किया है, इसीलिए भगवान ने ये छोटे से चीज से उसको वही अटका दिया। वो भाई यही कह रहा था कि बहन जी, आज मैं उसी फ्लाइट में होता था, मैं भी खत्म हो जाता था, अवार्ड तो मिलना ही नहीं था, जीवन भी चला जाता था, क्या फायदा होता था, है ना? लेकिन क्योंकि सबके साथ भलाई का व्यवहार मैंने किया, आज भगवान ने इतना बड़ा उपकार किया है मेरे ऊपर, जो मैं क्या बताऊं आपको। इसलिए भगवान जो करता है अच्छा ही करता है, बुरा वो कभी नहीं करता है। वो ऐसी अच्छी अच्छी बातें जब कर रहे थे और आगे कहने लगे, शायद मैं वहां जाता था, अगर मुझे अवार्ड मिलता भी था मान लो, तो मैं आकर के अहंकार में आ जाता था। भगवान नहीं चाहता था कि मैं अहंकार में आ जाऊं, इसीलिए ये एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन मेरे लिए है कि नहीं, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है, सिर्फ समय का इंतजार करना पड़ता है कि क्या अच्छा समाया हुआ है उसके लिए। उसकी वाइफ मुझे कहने लगी, बहन जी यही ज्ञान 10 दिन पहले आ जाता था तो कितना अच्छा होता था, मेरे जीवन के सबसे बुरे दिन अगर गए ना तो ये 10 दिन गए। पता नहीं उसने भगवान को कितनी गाली दी होंगी, जो आता था और भगवान का नाम लेता था उसके साथ भी बहस छिड़ जाती थी, और कभी कभी तो सिचुएशन इतनी नाजुक हो जाती थी कि वो सिचुएशन को संभालने में मुझे इतना टेंशन हो जाता था कि एक एक को बाहर ले जाकर के मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती थी कि भाई आप उसका बुरा नहीं मानना, इस वक्त उसकी मानसिक स्थिति को समझने का प्रयत्न करना। वो बहन कहने लगी, मैंने जिंदगी में अपने कर्मों के लिए इतनी माफी किसी से नहीं मांगी जितना इसके कर्मों के लिए मुझे मांगनी पड़ी, मेरे ये 10 दिन जो गए ना बहुत बुरे गए। मैंने कहा, बहन भगवान का शुक्र करो कि 10 दिन के अंदर समय ने पर्दा खोल दिया कि क्या अच्छा समाया हुआ था। कभी कभी कोई कोई घटना तो ऐसी आती है जिसका पर्दा समय 1 महीने के बाद खोलता है, वो समय कैसा जाता है, और कोई कोई समय तो ऐसा होता है कि जिसका पर्दा 1 साल के बाद खुलता है, वो साल कैसा जाता है। सिर्फ इस एक बात की एप्लीकेशन न कर पाने के कारण कि जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो बहुत अच्छा, तो जवाब मिल गया कि नहीं मिला? मिल गया ना, तो अभी तो कब दुखी नहीं होंगे ना, अभी दुख महसूस नहीं करना। लेकिन अब उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हुए समय का पर्दा जल्दी खोल देना, खोलने का हमारे ऊपर ही होता है, जितना हम नेगेटिव सोचते हैं उतना समय का जो पीरियड है वो बढ़ता जाता है, जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना समय पर्दा जल्दी खोल देता है। थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, धैर्यता रखनी पड़ती है, तब समय पर्दा खोल देगा और क्या अच्छा समाया हुआ था वो बता देगा, स्पष्ट कर देगा। लेकिन तब भी कई बार कई लोग कहते, नहीं बहन जी, कोई कोई बार तो ऐसा समय आता है जिसको हम जानते नहीं, पहचानते नहीं है, वो व्यक्ति भी उल्टा सीधा बोल कर जाता है, उस वक्त हम अच्छा कैसे समझे। मुझे याद आता है एक बार हमारा प्रोग्राम बॉम्बे में था, दोपहर को 3 से 5 प्रोग्राम था। प्रोग्राम के बाद शाम के समय हमारा कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं था, तो फ्री थे हम। तो एक परिवार वाले आकर हमें कहने लगे, बहन जी शाम के समय अगर फ्री हो तो हमारी कॉलोनी में बहुत अच्छे लोग रहते हैं, सब आध्यात्मिक विचार वाले लोग रहते हैं, और हम चाहते हैं उन सबको भी कुछ ज्ञान प्राप्ति हो, तो 1 घंटे का प्रवचन रखना चाहते हैं। हमने कहा भले रखो। बड़े खुश हो गए, हम सबको 7 बजे का टाइम दे, 7 से 8 आप कराएंगे। हमने कहा भले। तो उन्होंने अपने वहां कॉलोनी में प्रोग्राम रखा। दोपहर को 3 से 5 हमारा कार्यक्रम था। 5 बजे पूरा होने के बाद कुछ प्रश्न उत्तर हुए, कुछ लोगों से मिलना हुआ, ऐसे करते करते 5:30-6 हो गए। जो बहन हमारे साथ में थी वो कहने लगी, बहन जी अब हम आश्रम जाएंगे, फिर उनके घर जाएंगे तो ट्रैफिक का समय शुरू हो गया है, और कहीं अगर ट्रैफिक में अटक गए तो हम 7 बजे भी वहां पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि रास्ता भी लंबा है। हमने कहा फिर क्या करना चाहिए, तो कहा यहां से ही हम सीधे चले जाते। मैंने पूछा यहां से कितना दूर है, तो कहा बस 10 मिनट है। मैंने कहा फिर तो बड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे हम। कहा कोई बात नहीं, वो परिवार बहुत अच्छा है, अगर हम जल्दी भी पहुंच गए तो वो माइंड नहीं करेंगे कि ये लोग जल्दी क्यों आए। ठीक है चलो। तो हम चले, तो नेचुरल है कि हम 6 बजे में पहुंच गए। तो उन्होंने इतना जल्दी तो हमें एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना जल्दी हम पहुंच जाएंगे। तो जिस वक्त हम पहुंचे तो सारा परिवार बैठ के टीवी देख रहा था, तो कोई सीरियल चल रही थी उनकी। तो माता पिता ने बच्चों को इशारा किया कि टीवी बंद करो, तो बच्चों ने इशारा किया हम बंद करने वाले नहीं है, है ना, आजकल तो चलता नहीं है कुछ। तो माँ बाप ने फिर कहा अच्छा वॉल्यूम स्लो करो, तो बच्चों ने मान लिया, वॉल्यूम स्लो किया। अब वहीं बैठना था, वहीं इनकी टीवी भी चल रही थी, उनका वॉल्यूम स्लो कराया। यहाँ माता पिता हमसे बात करने लगे, कैसा रहा प्रोग्राम, क्या हुआ आदि पूछने लगे। अब जरूर है बच्चों को डिस्टर्ब तो होगा, है ना। तो आखिर क्या हुआ कि वो छोटा लड़का जो था उनका 12-15 साल का होगा, तो वो आकर मुझे कहने लगा, दीदी प्लीज डोंट माइंड, लेकिन आप थोड़ा साइलेंस रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। बड़ी अच्छी सभ्यतापूर्ण भाषा में उसने मुझे कहा कि आप चुप रहिए। मुझे भी हंसी आ गई। फिर वो अपना जस्टिफिकेशन देने लगा, कहने लगा दीदी ये सीरियल जो है ना बहुत अच्छी है और हम उसको मिस करना नहीं चाहते, क्योंकि आज उसका लास्ट एपिसोड है और आज के एपिसोड में कई सस्पेंस खुलने वाले हैं, इसलिए हम उसको मिस करना नहीं चाहते, अब प्लीज माइंड नहीं करना। मैंने कहा कोई बात नहीं। अब जब टीवी चल रही थी, साइलेंस में बैठना था, तो क्या करते हम। मैंने सोचा देखे तो सही उसका क्या सस्पेंस खुल रहा है, ऐसी क्या खास बात है इसके अंदर। मैंने भी देखा, अब एक दृश्य का दूसरे दृश्य से कोई कनेक्शन नहीं, कोई संबंध ही नहीं, लेकिन पता नहीं उनका क्या सस्पेंस खुलता था उसी में ही, जो खुश हो जाते थे, ताली बजाते थे, वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, क्या अच्छा हुआ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, है ना। अब स्टोरी जैसा भी कुछ नहीं लग रहा था, कोई स्टोरी ही नहीं थी जो समझ में आए कि हाँ भाई क्या स्टोरी है, लेकिन पता नहीं उनका क्या इतना अच्छा था जो वो खुश हो रहे थे। लास्ट में एंडिंग भी कोई खास नहीं थी, फिर भी बड़े खुश हो गए। आखिर मेरे से रहा नहीं गया, जब पूरा हुआ मैंने उस बच्चे को बुलाकर पूछा, इसमें क्या अच्छा था, तुम ये बात बताओ इसमें क्या अच्छा था, एक दृश्य का दूसरे दृश्य से कोई संबंध नहीं, फिर क्या अच्छा था, इसमें कोई स्टोरी जैसा भी नहीं है, फिर क्या अच्छा लगा तुमको। तो मुझे कहने लगा, दीदी आपने सारे एपिसोड नहीं देखे ना, इसलिए आपको पता नहीं चला। हमने तो सारे एपिसोड देखे हैं ना, इसलिए हमको पता था कि ये एपिसोड, ये दृश्य का कनेक्शन कौन से एपिसोड के साथ है, इसलिए हमें अच्छा लगा। इतना बोलकर वो तो निकल गया, लेकिन इतनी बड़ी बात मुझे समझा कर गया कि ये 5000 साल के चक्र में भी हमारे भी कितने जन्म है, और एक एक जन्म एक एक एपिसोड है ना। अब ये लास्ट एपिसोड है, कलयुग का अंत है। अब लास्ट एपिसोड में कोई स्टोरी जैसा होगा, सस्पेंस ही सस्पेंस होगा। इसलिए हमारे जीवन में भी कोई स्टोरी नहीं, सस्पेंस ही सस्पेंस है। और पता नहीं जब वो सस्पेंस समझ में नहीं आता है तो दुखी हो जाते हैं, हम ऐसा क्यों हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत बुरा हो गया। लेकिन कारण क्या कि हमें भी सारे एपिसोड याद नहीं है, इसलिए ये दृश्य का कनेक्शन कौन से एपिसोड के साथ है मालूम ही नहीं है, तो इसलिए दुखी हो जाते हैं। तो इसलिए जब भी कुछ होता है तो दुखी होने के बजाय ये सोचो इसका कनेक्शन कोई ना कोई एपिसोड के साथ तो जरूर होगा ही होगा। और इसलिए अगर हमें भी सारे एपिसोड अगर याद रहते थे तो हम भी क्या करते थे, वाह बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, यही कहते थे ना, याद होता था तो। लेकिन याद नहीं है इसलिए दुखी होते रहते हैं हम, क्यों हुआ ऐसा, तो अरे उसको हम जानते नहीं, पहचानते नहीं। लेकिन कोई जन्म में तो उसके साथ कनेक्शन होगा कि नहीं होगा, इस जन्म में नहीं जानते हैं लेकिन कोई जन्म में तो उसके साथ हमारा पाला पड़ा होगा कि नहीं पड़ा होगा, और इसीलिए इस जन्म में आकर उसने चुप्पू कर दिया, फिर दुखी होने की क्या जरूरत है। इसलिए कहा जो हुआ वो अच्छा, जो हो रहा है वो अच्छा, और जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा, बुरा कुछ है ही नहीं, हर घड़ी अच्छे से अच्छी है। अगर इस दृष्टिकोण को जीवन में अपना लिया जाए तो कभी जीवन में दुखी नहीं होंगे। और इसी को ही कहा जाता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का वास्तविक रीति का प्रयोग अपने जीवन में। नहीं तो मनुष्य के पास ज्ञान अथाह होता है लेकिन फिर भी हर छोटी बात में आवेश में आ जाना, हर छोटी बात में गुस्से में आ जाना, तो वो ज्ञान का कोई फायदा तो हुआ ही नहीं ना। तो ज्ञान का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अगर करना है तो कैसी भी परिस्थिति आए लेकिन उसमें भी हम विचलित न हो, उसको कहेंगे कि हाँ खेल है ना। जीवन जब खेल है तो खेल में तो सब होना ही है। आज क्रिकेट का खेल तो अच्छा लगता है सबको देखने में भी, कितना अच्छा लगता है। दो पार्टी होती है उसमें, है ना, एक पार्टी फील्डिंग कर रही है, एक पार्टी खेल में, उसमें भी उसके दो व्यक्ति वहां खड़े होते हैं, बाकी सारी उसकी टीम जो है बाहर दूर कहीं खड़े हुए, दूर कहीं बैठे हुए हैं। अब जब वो बैट्समैन खड़ा है तो कोई भी बॉल उसके हिसाब का आएगा, कोई भी बॉल उसके उसकी चाहना के हिसाब का आएगा, सब टेढ़े बांके बॉल, कैसे कैसे बॉल आते हैं। लेकिन वैसे बॉल में ही वो जब सिक्स या फोर मारता है तभी तो उसकी वाह वाह होती है ना। और चारों तरफ कौन खड़े हैं, फील्डर ही खड़े हैं जो एक ताक में खड़े रहते हैं कि किस घड़ी हम उसको आउट करें। तो जीवन भी तो खेल है, हमारी सारी पार्टी वाले पता नहीं कहां कहां दूर बैठे होंगे, खेल के मैदान में तो हम अकेले ही है। कोई भी घटना हमारे चाहना के हिसाब से आएगी और हमारे चारों ओर भी कौन खड़े होते हैं, फील्डर ही फील्डर खड़े होते हैं जो ताक में रहते हैं इसको कब क्लीन बॉल आउट करें हम। वही तो है, इसका नाम तो खेल है। लेकिन ऐसे खेल में भी अगर हम एक स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट रखते हैं तब तो जीवन के अंदर कहां से कहां पहुंच जाते हैं। इसी नाम जीवन जीने की कला है। ये खेल में किस तरह जीतना ये हमें आना चाहिए, कैसे कैसे बॉल आए जीवन में, कैसी कैसी परिस्थितियां समस्याएं रूपी बॉल आए फिर भी उसको कैसे हैंडल करके पार कर लेना, यही तो हमारी क्षमता है और यही प्रैक्टिकल एपिक खेल चल रहा है। इसको दिखाया है स्वास्तिका के रूप में, चारों भाग एक समान है, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। ये चक्र कब शुरू हुआ मालूम नहीं, जैसे दिन और रात का चक्र कब शुरू हुआ मालूम नहीं, लेकिन उसका पहला पहर सुबह को माना जाता है। ठीक इसी प्रकार ये चक्र कब शुरू हुआ ये पता नहीं, लेकिन उसका भी पहला पहर सतयुग को माना जाता है। कि जहां स्वास्तिका का हाथ राइट हैंड साइड पर ये पोजीशन में है, माना जहां हर आत्मा परमात्मा से आशीर्वाद प्राप्त की हुई आत्माएं हैं। सत्यता का युग जहां संपूर्ण सत्यता है, जिस युग को दूसरे शब्द में कहते ही है सूर्य वंश। कि जैसे सूर्य की कभी कला कम जास्ती नहीं होती है, ऐसे आत्माओं की कला भी कभी कम जास्ती नहीं होती है, सदा एक जैसी। जिसके लिए बाइबल में बहुत सुंदर बात कही हुई है जेनेसिस चैप्टर 1 में, कि जब परमात्मा ने ये सृष्टि रूपी खेल का पहला पहर रचा था, वो पहर कैसा था, तो उसमें लिखा हुआ है गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। परमात्मा ने मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी कृति में बनाया था। क्योंकि सत्ययुग से पहले कलयुग था और कलयुग के अंदर मनुष्य थे, तो उन मनुष्य को ही अपने स्वरूप में यानी भगवान भगवती के रूप में बनाया था। इसलिए दुनिया के अंदर आज भगवान भगवती अनेक है, लेकिन भगवान एक है। गॉड इज वन बट गॉड्स एंड गॉडेसेस आर मेनी, है ना। जो नेक्स्ट टू गॉड है, ऐसे दिव्य आत्माएं अनेक है। जिस दुनिया का वर्णन अगर करे तो उस समय में भारत कैसा था, एक स्वर्गिक दुनिया थी। ऐसा भारत जहां पर सोले कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम सर्वगुण संपन्न आत्माएं थी, जहां प्रकृति पशु पक्षी आत्माएं सब सतो प्रधान पवित्र स्वरूप में थे, जहां संपूर्ण शांति थी और जहां हर रीति से समृद्धि समाई हुई थी। इसीलिए उसको कहा ही जाता है भारत। भारत माना आभा, भा का अर्थ है आभा, जिसकी आभा इतनी सुंदर थी, जहां हर आत्मा इतने पवित्र स्वरूप में, प्रकाश स्वरूप में स्थित थे। भारत के जिस रत्ती की आभा ऐसी निराली और न्यारी थी, जहां बसने वाले हर देवी देवताओं के अंदर ऐसी आभा पवित्रता की समाई हुई थी, ऐसा प्रकाश पवित्रता का समाया हुआ था, इतनी सुंदर वो दुनिया थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और उस दुनिया के अंदर राज्य करने वाले कौन थे, सतयुग के अंदर राज्य करने वाले थे श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। कैसे पता चला श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य था, तो श्री नारायण के साथ हमेशा एक शब्द जुड़ता है, सत्य नारायण और सूर्य नारायण। सत्य नारायण, सूर्य नारायण अर्थात जो सतयुग के राज्यकर्ता थे, जो सूर्य वंशी थे, इसलिए उसको कहा सूर्य नारायण, सत्य नारायण। तो जहां ऐसे श्रेष्ठ देवी देवताएं निवास करते थे, जिनके अंदर संपूर्ण पवित्रता थी, इसलिए तो आज भी उनके मंदिरों में प्रतिमा रख करके हम पूजा करते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सृष्टि नाटक का दूसरा भाग आया जिसको कहा त्रेता। त्रेता माना जहां थोड़ी त्रुटि आ गई, इसीलिए त्रेता युग को दूसरे शब्द में कहते चंद्रवंश। कि जहां देवताएं वो सीढ़ी नीचे उतरे, दो कला कम हुई, पवित्रता सुख शांति संपन्नता वो राज्य में भी है, लेकिन सतयुग जितनी संपूर्णता नहीं है, दो कला कम हो गई, जैसे चंद्रमा की कला कम होने लगती है वैसे, लेकिन प्रकाश में उसकी आभा में कोई इतना ज्यादा अंतर नहीं आता है। उस दुनिया में राज्य करने वाले कौन थे त्रेता युग में? तो कहते श्री राम और श्री सीता का राज्य था। कैसे पता चला श्री राम का राज्य था? तो श्री राम के साथ शब्द जुड़ता है श्री रामचंद्र। सूर्य नारायण कहा और रामचंद्र कहा, इसीलिए दिखाते हैं कि श्री राम के पूर्वज सब सूर्यवंशी थे, सूर्य का तिलक लगाते थे। परंतु जहां से श्री राम आए वहां से दूसरा युग आरंभ हो गया, जिसको कहा जाता त्रेता युग या चंद्रवंश या राम राज्य कह करके आज भी हम याद करते हैं। लेकिन तब मनुष्य के मन के अंदर एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि देवताओं ने ऐसे कौन से कर्म किए जो उनकी कलाएं कम हो गई? कोई कर्म करने वाली बात नहीं है, लेकिन संसार का यह अनादि नियम है कि कोई भी चीज सदा स्थायी एक ही स्थिति में नहीं रहती है। आज की दुनिया में विज्ञान में भी यह कहा जाता है, साइंस का थर्मोडायनामिक्स का सेकंड प्रिंसिपल लॉ ऑफ एंट्रोपी ये कहता है कि एवरीथिंग मूव्स फ्रॉम एन ऑर्गेनाइज्ड टू अ डिसऑर्गेनाइज्ड स्टेज। हर चीज पहले सुव्यवस्थित होती है और फिर अस्त व्यस्त होती है, और जब सुव्यवस्थित से अव्यवस्थित होती है तो ये नेचुरल प्रक्रिया है। कोई भी चीज पहले नई होती है फिर पुरानी अपने आप हो जाती है। मकान नया होता है, पुराना बनाना नहीं पड़ता है, पुराना अपने आप हो जाता है, पुराने से नया बनाना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार बाजार से ये कपड़ा ले आओ, रख दो कबाट में, 10 साल तक उसको रखा रहे, निकालो नहीं, 10 साल के बाद निकालो, क्या कहेंगे 10 साल नया है पुराना है? अरे यूज भी नहीं किया, पुराना कैसे हो गया? थोड़ा ऐसे करेंगे कपड़ा फटने लगेगा। क्यों? नए से पुराने अपने आप होता है, ये एक नेचुरल प्रक्रिया है, पुराने से नया बनाना पड़ता है। इसी तरह कुदरत की हर चीज ऊपर से नीचे की ओर अपने आप आती है, नीचे से ऊपर उसको चढ़ाना पड़ता है। पानी ऊपर से नीचे अपने आप आता है, नीचे से ऊपर उसको चढ़ाना पड़ता है। इसी तरह देखो चंद्रमा को पूर्णमासी कितना दिन रहती है और अमावस्या कितना दिन रहती है? एक घड़ी दूसरी घड़ी से फिर उसकी अमावस्या के तरफ यात्रा। तो कोई भी चीज सदा स्थायी एक ही स्थिति में नहीं रह सकती है, परिवर्तन कुदरत का नियम है। और इसी परिवर्तन की प्रक्रिया से देवताएं भी गुजरे, इसीलिए संसार का तीसरा भाग जो आया द्वापर, जहां से दो पुर आरंभ हो गए, सत्यता और एकता समाप्त हुई त्रेता युग के अंत तक। द्वापर माना जहां स्वास्तिका का हाथ लेफ्ट हैंड साइड पर मुड़ गया और इस पोजीशन में आ गया, माना मांगने की पोजीशन, कि जहां पर दो पुर यानी सत्य के साथ असत्य चलने लगा, द्वेष भावना उत्पन्न होने लगी और इसलिए कलह क्लेश शुरू हुआ, तो दुख अशांति आरंभ हुई। तब कहा जाता दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई, अगर सुख में करे तो दुख काहे को होए। तो दुख संसार में क्यों आया? क्योंकि सत्ययुग और त्रेता युग में ईश्वर को किसी ने याद ही नहीं किया, स्वयं ही ईश्वर के स्वरूप में थे, भगवान भगवती स्वरूप में थे, श्रेष्ठ भाग्य भोग रहे थे, इसलिए भगवान को याद नहीं किया, इसीलिए द्वापर आया। तो जो देवी देवताएं होकर के गए थे उसके ही मंदिर में प्रतिमा रख करके पूजा करने लगे। जैसे आजकल की दुनिया में भी कोई ऐसी महान आत्मा महान हस्ती होती है तो उनका मंदिर बना करके उसकी भी पूजा करते हैं, गुरु के रूप में मानते हैं, भगवान के रूप में मानते हैं। ऐसे उन देवी देवताओं की भी मूर्तियों को मंदिर में रख करके पूजा करने लगे। लेकिन ये संसार के अंदर एक परिवर्तन आता है कि जो श्रेष्ठ आत्मस्थिति में स्थित देवताएं थे वो धीरे धीरे उस आत्मस्थिति से नीचे उतर करके देह अभिमान के वश होने लगे, और देह अभिमान के वश होने लगे तो शास्त्र का निर्माण किया, मंदिर बनाने लगे, रीत रसम रिवाज बनाने लगे, पूजा पाठ आरंभ करने लगे, ऐसी अनेक प्रकार की विधियों को अपनाने लगे। लेकिन धीरे धीरे भगवान को जब याद करते हैं तो ये तो नहीं कि भगवान फिर भी अपने बच्चों की प्रार्थना को अनसुना कर देगा। हाँ, उसका आने का वक्त नहीं, अभी तो अधर्म शुरू हुआ है। तो इसीलिए कोई इतना घोर अधर्म का युग तो है नहीं जो परमात्मा स्वयं आ जाए। इसीलिए उस संसार के अंदर तीन महान आत्माओं को भेजते हैं भारत से बाहर। भारत के अंदर तो अनेक महापुरुष आ गए, लेकिन भारत से बाहर तीन मुख्य धर्म पिताएं आते हैं। सबसे पहले इब्राहिम आते हैं जो इस्लाम धर्म की स्थापना करते हैं। उसके बाद महात्मा बुद्ध आते हैं जो बौद्ध धर्म की स्थापना करते हैं, और उसके बाद क्राइस्ट आते हैं जो क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करते हैं। ये तीन महान धर्म पिताएं आते हैं। हरेक ने यही कहा कि हम भगवान का पैगाम लेकर गया है। किसी ने ये नहीं कहा कि हम ईश्वर है, नहीं, हम परमात्मा का पैगाम लेकर के आए। लेकिन जिस समाज में वो गए उस समाज की व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने कुछ प्रचार आरंभ किए, जो प्रचार भिन्न भिन्न थे। जैसे जहां इब्राहिम गए थे उस समाज की व्यवस्था कैसी थी, तो उस समाज के अंदर मनुष्य जीवन के लिए कोई सिद्धांत नहीं थे, तब उन्होंने जीवन जीने के कुछ सिद्धांत दिए। लॉज टू गवर्न ह्यूमन लाइफ, प्रिंसिपल्स टू गवर्न ह्यूमन लाइफ, जो आज भी उनके पवित्र धर्म पुस्तक में लिखे हुए हैं। इसी तरह जहां पर महात्मा बुद्ध गए थे वहां की समाज की व्यवस्था कैसी थी, वहां उन्होंने दो बातों को देखा, उसी के ऊपर अपना प्रचार आरंभ किया। सबसे पहली बात देखी कि दया नाम की चीज नहीं है उनके जीवन के अंदर, इसलिए कहा दया धर्म का मूल है, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखो, ये उनके प्रचार रहे, और कर्म ही धर्म है। लेकिन अफसोस कि जहां पर ये महान आत्माओं ने जिस समाज को शिक्षा दी उस समाज ने उस शिक्षा को समझा नहीं। महात्मा बुद्ध ने भी जब दया की बात की तब भी वो समाज दया की भावना नहीं रख पाया, और ये दिन प्रतिदिन निर्दयी बनते गए। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव नहीं है। आज भी कोई भी चाइनीज कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट में चले जाओ, क्या खाते है वो लोग, जो दुनिया में कोई नहीं खाते वो ये लोग खाते हैं। आप सोचेंगे बहन जी को कैसे पता। कुछ समय पहले हम हांगकांग चाइना के तरफ गए थे, तो जैसे बंबई की चौपाटी बहुत मशहूर है, बेलपुरी पानीपुरी के स्टॉल्स लगे रहते हैं, ऐसे हांगकांग की चौपाटी भी बहुत मशहूर है। तो वहां पर जब गए हम तो वहां पर क्या देखा कि दोनों तरफ स्टॉल्स लगे होते। हमें जाना था एक आईलैंड पर, तो बोट लेनी थी, तो बोट में जाने तक वो रास्ता जो हम गुजरे 10 मिनट वो चौपाटी से, वहां का दृश्य देखकर कभी मुझे भूलता नहीं। इतने लंबे लंबे सांप लटक रहे हैं और बड़े बड़े तवे रख के वो सांप को फ्राई करके लोग इसके पीसेस करके खा रहे हैं, बड़े चाव से खा रहे हैं। कहीं देखो तो बड़े बड़े खेखड़े तले जा रहे थे, कहीं देखो तो कॉकरोच की चटनी पीसी जा रही थी। तो मुझे तब महसूस हुआ कि ये महात्मा बुद्ध ने 2500 साल पहले क्यों कहा था प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखो, इन लोगों के मन के अंदर कोई दया भाव नहीं है। आजकल तो आपने देखा होगा टीवी इंटरनेट समाचार पत्रों में भी कि ताइवान के अंदर मनुष्य के छोटे छोटे बच्चे 10 दिन के 15 दिन के बच्चों को होटल वालों को बेचा जाता है $2000 में, $1800 में, और उनको पूरा का पूरा बेक करके वो खाते हैं, है ना। जिस दृश्य को आप देखेंगे प्रैक्टिकली, एक इंसान का छोटा सा बच्चा 10 दिन का, और मनुष्य कैसे उसके अंगों को काट करके बैठ करके खा रहा है, हैवान बनता जा रहा है मनुष्य। आज ये समय आ गया है कि माता पिता अपने बच्चों को भी खाने में हिचकिचाते नहीं है, ये समय आ गया है। इसी तरह जहां पर क्राइस्ट गए थे वहां की समाज की व्यवस्था कैसी थी, उस समाज में भी उन्होंने दो बातों को देखा कि मनुष्य को मनुष्य के प्रति नफरत है और उनके जीवन के अंदर सत्यता नहीं है। तब क्राइस्ट ने अपने प्रचार में यही कहा, लव इज गॉड, ट्रुथ इज गॉड, प्रेम ईश्वर है, सत्य ईश्वर है। लेकिन अफसोस वहां के समाज वालों ने उस बात को समझा नहीं, और इसीलिए जहां पर भी ये संसार में चले गए, गए थे व्यापारिक संबंध के लिए, लेकिन जाने के बाद क्या किया, झूठ और नफरत के बीज उस धरनी में बोए और धीरे धीरे करके राजाओं को प्रजाओं को आपस में लड़ाकर, राजाओं को राजाओं के साथ लड़ा करके उस देश का राज्य अपने हाथ में कर लिया, और वापस देने वक्त क्या किया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, देश का दो टुकड़ा किया, नफरत के बीज इतने गहरे बोए कि इतने सालों के बाद भी कोई बात पर समाधान ही नहीं होता है। सोचने की बात है, किस लिए लड़ रहे हैं मालूम नहीं, भाई भाई लड़ रहा है लेकिन किस लिए लड़ रहा है मालूम नहीं, कोई कारण नहीं है लेकिन लड़ रहा है, और कोई समाधान हो ही नहीं रहा है। इसलिए कहा, कितने गहरे नफरत के बीज बोए होंगे सोचने की बात है, इतने सालों पहले जो उसका समाधान ही नहीं हो पा रहा है। तो कहा, अफसोस कि उस समाज वालों ने उस शिक्षा को समझा नहीं, और इस तरह से धीरे धीरे चौथा युग आया जिसको कहा कलह क्लेश वाला युग, जिसको दूसरे शब्द में कहते हैं घोर अधर्म का युग, जहां घर घर के अंदर महाभारत है, कलह क्लेश है। दूसरे शब्द में उसको कहो तो रावण राज्य है। रावण राज्य इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि रावण कोई असुर नहीं था, ब्राह्मण था, ऊंची जाति का था, रावण जैसा विद्वान कोई नहीं था, रावण जैसा धनवान कोई नहीं था, रावण जैसा शक्तिशाली कोई नहीं था, और रावण जैसा भक्त भी कोई नहीं था। इतनी क्वालिटीज थी उसके अंदर। उसके बाद भी उसके राज्य का सर्वनाश करने के लिए भगवान को आना पड़े, कारण क्या, उसके जीवन में दो कमजोरी आ गई थी, और वो दो कमजोरी कौन सी थी, अहंकार चरम सीमा पर था और चरित्र भ्रष्टता जीवन में आ गई थी, इसीलिए ऐसे राज्य का सर्वनाश हुआ। ठीक इसी प्रकार आज की दुनिया में भी अगर देखें ये रावण राज्य कैसे हैं, तो मनुष्य सभी प्राणियों में उत्तम प्राणी माना गया है, मनुष्य जैसा बुद्धिशाली कोई नहीं, मनुष्य जैसा शक्तिशाली कोई नहीं, मिसाइल पावर है आज उसके पास, बुद्धिशाली कोई नहीं, विज्ञान की शक्ति है उसके पास, मनुष्य जैसा भक्त भी कोई नहीं है, और मनुष्य जैसा धनवान भी कोई नहीं। रात्रि के समय में बड़े शहरों का नजारा देखो, कैसे सोने की लंका चमक रही हो ऐसा दिखाई देता है। तब कहा कि मनुष्य जैसा बुद्धिशाली, शक्तिशाली, धनवान और भक्त भी कोई नहीं है। लेकिन आज मनुष्य जीवन में भी दो कमजोरी आ गई है, कौन सी, अहंकार चरम सीमा पर पहुंचता जा रहा है, और दूसरा चरित्र भ्रष्टता आने लगी है। और इन्हीं दो कारण के आधार पर वो भी किस दिशा की ओर बढ़ रहा है, अपना ही सर्वनाश की ओर। आज मनुष्य किस दिशा के तरफ है, अपना ही सर्वनाश। जिस युग के अंदर हर इंसान बंधन महसूस कर रहा है, ऐसा बंधन के जिसमें से छूटना चाहते हुए भी छूट नहीं पा रहा है, क्योंकि हर प्रकार की बुराई उसके जीवन में अति में पहुंच गई है, क्लाइमेक्स की स्थिति पर है और मनुष्य अपनी ही कर्मेंद्रिय का गुलाम बन चुका है, विकारों के अधीन उसका जीवन हो गया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, आलस, भय के कारण उसकी शक्ल देखो कैसी होती जा रही है। कहां देखो टेंशन में पड़ा है, कहां देखो तो एकदम क्रोध में लाल पीला हो रहा है, कहां देखो तो डिप्रेशन में, गम में, उदासी में पड़ा है। और न आत्मा का यथार्थ ज्ञान है, न परमात्मा का यथार्थ ज्ञान है। परमात्मा को भी कहां ढूंढ रहा है? परमात्मा को भी ढूंढ रहा है तो प्रकृति के पांच तत्वों में ढूंढ रहा है। कहां देखो तो नदियों की पूजा कर रहा है, कहीं देखो तो वृक्षों की पूजा कर रहा है, कहीं देखो तो पशुओं की पूजा कर रहा है, कहीं देखो तो सूर्य की पूजा कर रहा है, कहीं माना भगवान को कहां कहां ढूंढ रहा है, क्योंकि न आत्मा का यथार्थ ज्ञान है, न परमात्मा का यथार्थ ज्ञान है, तो अंधकार में जैसे भटकने का अनुभव कर रहा है। और ऐसी जब स्थिति आ जाती है तो परमात्मा को भी इस सृष्टि पर आना पड़ता है। लेकिन जब ये बात कहते हैं तो लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं कलयुग तो अर्जुन छोटा बच्चा है, अभी कहां इतना बुरा हुआ है, अभी तो लाखों साल पड़े। अरे सोचने की बात है कि कलयुग को अर्जुन अगर लाखों साल पड़े हो और ये बचपन की स्थिति है और बचपन में ही इतना घोर पाप हो रहा है तो बुढ़ापे में क्या होगा। वो कवि प्रदीप जी का एक गीत याद आ रहा है जो कहा है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। फिर आगे एक और गीत भी है कि जिसमें कलयुग की अंतिम निशानियां बताई हुई है, ऐसा कलयुग आएगा रे, यहाँ क्या क्या होगा वो सारी निशानियां वर्णन की। मैं कोई सारी निशानी वर्णन नहीं करूंगी क्योंकि आप सभी मेरे से ज्यादा अनुभवी हो ही, लेकिन एक निशानी मुझे अच्छी लगती कि कलयुग का अंत कब समझना चाहिए, तो उसमें लिखा है कि कलयुग का अंत तब समझना चाहिए जब चार कुएं का पानी एक कुएं में भर जाए लेकिन एक कुएं का पानी चार में न भरे, तब समझना कलयुग का अंत। वो कोई जड़ कुओं की बात नहीं है, चेतन कुओं की बात है कि आज एक माता पिता चार बेटे के पानी को अपने में समा लेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, बड़ा करेंगे, सेटल करेंगे, शादी करेंगे, नौकरी धंधे लगा देंगे, लेकिन जब एक माता पिता को समाना आता है तो चारों बच्चे मिलकर के एक माता पिता के पानी को समा सकते हैं? नहीं, वृद्धाश्रम बताएंगे, है ना, वृद्धाश्रम में जाकर के रहो। नहीं तो आज मदर टेरेसा क्यों बनती थी? मदर टेरेसा का जीवन का टर्निंग प्वाइंट कहां से था कि एक बार वो मॉर्निंग वॉक करने निकली थी अपनी कुछ बहनों के साथ, बहुत दर्द भरी कराहने की आवाज सुनाई दी, उस दिशा की ओर गई तो देखा एक कीचड़े के डब्बे में एक आदमी पड़ा है, उसको लेप्रसी का रोग था और इस तरह से कीचड़े के डब्बे में पड़ा था जो हिल भी नहीं पा रहा था और चूहे उसके शरीर को नोच रहे थे, आधा शरीर खा चुके थे जैसे। मदर टेरेसा ने जब ये दृश्य देखा उसका हृदय विदीर्ण हो गया और उस आदमी को बाहर निकाला और पूछा, तू अंदर कैसे चला गया? तब वो रोता हुआ कहता है, जिंदगी भर मैंने दुख देखा लेकिन आज मेरे बच्चे भी मेरे से तंग हो गए, कल रात को मेरे बेटे ने मुझे कीचड़े के डब्बे में फेंक दिया और कहा मर जा बुड्ढा, मरता भी नहीं। आज वो समय आ गया कि माँ बाप बच्चे को खाने में हिचकिचाते नहीं और बच्चे माँ बाप को कीचड़े में डब्बे में फेंकने में हिचकिचाते नहीं है। इससे ज्यादा कलयुग क्या देखना चाहते हैं? क्या ये कलयुग की अति नहीं है? क्या अभी भी ये सोचते हैं कि कलयुग को लाखों साल पड़े, लाखों साल हो सकते हैं? मदर टेरेसा ने उसी समय प्रतिज्ञा की, आज के बाद मेरा जीवन इन लोगों के लिए ही रहेगा। उसने अपने समाज वालों से बात की, बहुत विरोध हुआ, उसने उस समाज को छोड़ दिया, अलग से अपनी एक संस्था बनाई। और वो व्यक्ति कोई ज्यादा जिंदा तो नहीं रहा, क्योंकि पॉइजन उसके शरीर में फैल चुका था, लेकिन मरते वक्त उसने एक लाइन बहुत अच्छी कही, जिंदगी भर मैं दुख के हाथों में पला, आज सुख के हाथ में मर रहा हूं, उससे मुझे विश्वास हो रहा है कि मेरा आगे का जन्म सुखी होगा। वहां से वो सिस्टर टेरेसा से मदर टेरेसा बन गई। कहने का भावार्थ ये है कि कलयुग की अति, और जब अति आ जाती है तो अति संकेत है अंत की, और अंत संकेत है नई आद की, क्योंकि ये चक्र चलता ही रहता है। और इसी तरह आज वैज्ञानिक रीति से भी अगर देखा जाए तो विज्ञान ने भी ये पुष्टि की है कि ये संसार अभी ज्यादा समय नहीं चल पाएगा। आज जिस तरह पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है संसार के अंदर, जिस प्रकार ओजोन लेयर्स में होल्स होते जा रहे हैं, बड़े से बड़े छेद होने लगे हैं, जिस प्रकार ऑक्सीजन का सोर्स वृक्ष कटते जा रहे हैं, कुछ समय पहले यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों का प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम के दौरान उनसे बातचीत करते समय ये प्रश्न पूछा कि जिस गति से पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, ये पॉपुलेशन को जीवित रहने के लिए कितने परसेंटेज फॉरेस्ट होने चाहिए? तो उन्होंने कहा ये पॉपुलेशन को जीवित रहने के लिए कम से कम 33% फॉरेस्ट होने चाहिए संसार में। हमने पूछा इस वक्त फॉरेस्ट कितने हैं दुनिया के अंदर, तो कहा ऑन पेपर 14% और प्रैक्टिकल में 11%, और ये भी जब 9% हो जाएगा तो ऑक्सीजन मिलना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि इतना पॉपुलेशन है जो उनको इतनी मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि रात्रि के समय तो पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन ही लेते हैं, तो इतना दिन भर में प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो रात में कहां से उसको मिलेगा। तो इसलिए कहा कि अगर ये 9% हो गया तो ह्यूमन सर्वाइवल इज इम्पॉसिबल। तो वैज्ञानिक पुष्टि भी यही बताता है कि जिस तरह प्राकृतिक असंतुलन आ रहा है संसार के अंदर, ये प्राकृतिक असंतुलन भी यही संकेत दे रहा है कि अब ये संसार ज्यादा समय चलने वाला नहीं है। इसलिए आप देखते हैं कि बड़े से बड़े रेक्टर स्केल पर भूकंप आ रहे हैं, ज्वालामुखियां फट रही है, सुनामी लहरें उत्पन्न हो रही है, और चक्रवात तूफान बड़े से बड़े रूप में आ रहे हैं। दुनिया के अंदर कितनी लड़ाइयां, जाति भेद, धर्म भेद, भाषा भेद के कारण खून की नदियां बह रही है, और ये सारे मिसाइल्स जो बनाए हुए हैं, वो मिसाइल्स भी कोई रखने के लिए थोड़ी बनाए हैं, इसका भी प्रयोग आज नहीं तो कल कभी तो होना ही है, क्योंकि सारे मिसाइल्स कंप्यूटराइज कंट्रोल है। अब कभी भी अगर कंप्यूटर में वायरस आ गया तो क्या होगा? इसीलिए कहा जाता है कि आज मनुष्य भले संयुक्त राष्ट्र संघ भी कितना प्रयत्न कराते हैं कि युद्ध न छिड़ जाए, लेकिन कहा जाता है मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। नर चाहत कुछ और, होवत कुछ और, क्योंकि ईश्वर की जो प्रक्रिया चल रही है वो सूक्ष्म गति की प्रक्रिया है, जिसको समझ पाना भी कभी कभी बहुत मुश्किल है। और इसलिए ये अगर कंप्यूटर वायरस न भी आए, लेकिन मनुष्य के दिमाग में वायरस आने में कोई देर लगती है? जो व्यक्ति वो कंप्यूटर को संभाल रहा हो, घर में अगर झगड़ा हुआ और उसका मन इतना उदास हो गया और जीने के प्रति उसको वैराग आया, तो जाएगा सोचेगा दबा दो बटन, खत्म करो खेल, मरो और मारो सबको, बस इतना देर लगेगी। और एक बार बटन दब गया कि उसके बाद कुछ हो सकता है? कुछ नहीं होगा, है ना? इसलिए कहा कि ये संसार अब कोई ज्यादा समय चलने वाला नहीं है। परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत तीव्र गति पकड़ चुकी है। और ऐसे समय पर भगवान ने भी जो वायदा दिया था, यदा यदा ही धर्मस्य, तो भगवान भी संसार में आते हैं, परम शक्ति भी आती है और संसार में भी, भारत में, और भारत में भी एक साधारण मनुष्य तन का आधार लेकर के ज्ञान और योग की शिक्षा देते हुए यही संदेश देते हैं कि अब बच्चे वापस घर जाना है, अब समय पूरा हो रहा है। लेकिन ऐसे समय पर भगवान भी दो शिक्षा देते हैं, संसार की हालत को देखते हुए। लेकिन अफसोस कि आज के संसार के मनुष्य भी उन बातों को स्वीकार नहीं कर पाता है। और वो कौन सी दो बातों का संदेश देते हैं? योगी बनो, पवित्र बनो, आत्म शुद्धिकरण करो, यही दो बातों का संदेश है। आत्म शुद्धिकरण करो और उसके लिए योगी बनो, पवित्र बनो। लेकिन आज की दुनिया के लोगों को जब ये बात कहते तो क्या कहते? अरे बहन जी, सारे लोग पवित्र हो जाएंगे तो दुनिया कैसे चलेगी? अरे दुनिया को चलाने का ठेका हमने लिया है क्या? वो तो ऊपर वाले को मालूम है ना उसको कैसे दुनिया चलानी है, हम क्यों उसकी चिंता करें। एक बार हमारा प्रोग्राम था कहीं पर, साप्ताहिक कार्यक्रम था, 7 दिन तक बहुत सुंदर प्रवचन माला चली। 7वें दिन जब अनुभव की लेन देन थी तो एक भाई आकर के अपना अनुभव सुनाने लगे और कहने लगे कि 7 दिन मैंने ये प्रवचन माला सुनी, बहुत अच्छा लगा। ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान इतना सत्य है, इतना प्रैक्टिकल बातें उन्होंने बताई, इतना लॉजिकली हर बात स्पष्ट की, लेकिन इनकी एक बात के कारण हम उनसे दूर भागते रहे। ऐसी कौन सी बात थी? तो फिर सुनाने लगा, ये लोग भाई बहन बना देते हैं, है ना? अब ब्रह्मा कुमारियों को क्या पड़ी है किसको भाई बहन बनाने की, हम क्यों बनाएंगे किसको भाई बहन, है ना? आज जब आप मंदिर में जाते हैं, भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हाँ तुम मात पिता हम बालक तेरे, ये प्रार्थना सभी ने की है ना कि नहीं की है? सभी ने की है या बहनों ने कुछ और गाया कि मेरे पति के मात पिता तो मेरे सास ससुर, कभी कहा भगवान को ऐसा? जब आप ये प्रार्थना कर रहे थे तब आप कौन बन गए थे? ये प्रार्थना किसने सिखाई थी? ब्रह्मा कुमारियों ने सिखाई थी क्या? अरे ये प्रार्थना तो आप कितने समय से करते ही आए और उस समय आप कौन बन गए थे उसका आपको पता भी नहीं। ब्रह्मा कुमारियों ने कोई ऐसी बात नहीं सुनाई। ये 3 दिन में आपने सुनी कोई बात ऐसी? नहीं, हम नहीं सुनाते। हम परमात्मा का संदेश अवश्य देते हैं, करना न करना आपकी मर्जी, लेकिन ये संदेश के पीछे भी एक रहस्य है। जब भगवान कहता है ये समय पर आके कि योगी बनो, पवित्र बनो, तो भगवान को क्या कहते हैं? जानी जानन हार, वो सब कुछ जानता है। इसलिए आने वाले कली काल को भी वो अच्छी तरह जानता है कि अब जो कली काल आ रहा है, जो अंतिम उसका वार होगा, वो कौन सा होगा। क्योंकि जब दुश्मन मरता है तो अंतिम दाव भी लगाता रहता है ना, छोड़ता थोड़ी है। तो अब जो अंतिम दाव उसका है वो कौन सा है, भगवान सब कुछ जानता है, इसलिए सावधान करता है। करना न करना आपके ऊपर है, लेकिन फिर भगवान को दोष नहीं देना, क्योंकि समय भी ये संकेत दे रहा है। आज दुनिया में नंबर 1 पर जो बीमारी चल रही है, कौन सी चल रही है? एड्स, जिसका कोई इलाज नहीं है। तो समय भी संकेत दे रहा है, फिर भी अगर मनुष्य ने नहीं समझा कि आत्म संयम की आवश्यकता क्यों है जीवन के अंदर, और कैसे हम अपने इंद्रियों को डिसिप्लिन में रखें, वो अगर समझ नहीं है तो समय का शिकार बनना भी निश्चित है। आज न्यूज़पेपर जब पढ़ते हो, हर रोज एक खबर अवश्य पढ़ते हैं, कौन सी खबर? कामेशु क्रोधेशु मनुष्य के कृत्य। कोई दिन का अखबार ऐसा होता है जिस दिन ये खबर न छपी हो, और जब ये पढ़ते हैं, पढ़ते वक्त आपके अंदर में कौन सा भाव उत्पन्न होता है, आने वाला समय कौन सा है, ये कृत्य बढ़ेंगे या कम होंगे? क्या कहता है आपका विवेक? बढ़ेंगे। और उस वक्त आत्मरक्षा का साधन कौन सा है? कोई इंसान किसी की रक्षा नहीं कर सकेगा, उसकी ताकत नहीं है। रावण जैसा, रावण शास्त्र में बताते हैं इतना शक्तिशाली था, जिसने श्री राम को ललकार दिया युद्ध के लिए, जिसके पास दिव्य अस्त्र थे, सीता जी को सम्मोहित करके जब ले आए तो अपने महल में नहीं रख सके, बगीचे में रखना पड़ा। क्यों? और उसके बाद सीता जी को स्पर्श तक नहीं कर सके। सीता जी के पास अपने आत्मरक्षा के लिए कौन से शस्त्र थे? एक घास का तिनका जो उठा करके रख दिया, और सीता जी ने राम को, रावण को चैलेंज कर दिया कि हे रावण, इस तिनके से आगे कदम भी बढ़ाए तो जल जाएगा, इतनी शक्ति है मेरी। कौन सी शक्ति थी? पवित्रता की, ब्रह्मचर्य व्रत की शक्ति थी। 14 साल के जो ब्रह्मचर्य व्रत की शक्ति थी, वो कोई कम नहीं होती है। और जिसके कारण रावण जैसा रावण भी कांप उठा कि सीता जी को स्पर्श नहीं कर सका। आज के समय में भी ऐसे कामेशु क्रोधेशु मनुष्य, ऐसे रावण अनेक उभरेंगे, और ऐसे रावणों के सामने भी कोई किसी की रक्षा नहीं कर पाएगा। और इसीलिए भगवान जानी जानन हार है, वो विधि बताता है, करना न करना आपका काम है। लेकिन फिर भगवान को दोष नहीं देना कि हे प्रभु, तुमने मेरी रक्षा क्यों नहीं की। भगवान कहता है, मैं रक्षा करने ही लिए तो कह रहा हूं कि अपने आसपास ऐसा कवच तैयार करो, पवित्रता का, जिस कवच के अंदर आप सुरक्षित रहेंगे। और ये कवच अगर नहीं तैयार किया तो समय का शिकार होना स्वाभाविक है। फिर भगवान को दोष नहीं देना। कई लोग हमें कहते, ब्रह्मा कुमारियां बाहर किसी के हाथ का खाना पीना नहीं खाते, दूसरे को अशुद्ध समझते हैं। क्या अशुद्ध समझने की बात नहीं है? आज आपके घर में छोटा बच्चा या पोता होता है, उसको स्कूल भेजते समय आप क्या सिखा के भेजते हो? बाहर कोई तुझे चॉकलेट दे, आइसक्रीम दे, खा लेना चाहिए, बिस्किट दे, खा लेना चाहिए। क्यों? आप भी समय को अच्छी तरह जानते हैं कि आज किसी को किसी पर दुश्मनी निकालनी होती है तो उसको खिलाने में ही कुछ मिलाकर खिला दिया जाता है, जिससे उसकी बुद्धि काम करना बंद हो जाती है। किसी को किसी से ईर्ष्या है, कहीं जॉब में ईर्ष्या है, कहीं कोई बात के कारण दुश्मनी हो गई है, ऊपर से बड़े शुगर कोटेड रहेंगे लेकिन अंदर में क्या खिलाने में मिलाकर खिला देंगे जो किसी को भी पता नहीं चलता है। आज किसके ऊपर भरोसा करेंगे आप? कई जगह ये आप लोग जैसे ही आकर के हमें सुनाते हैं, बहन जी फलाने परिवार के अंदर वो सास ने वो अपने बेटे को कुछ खिला दिया जो बहू को मारता रहता है, पीटता रहता, उसका सुनता ही नहीं है। परिवार वाले परिवार वालों को खिलाने लगे हैं। या कहीं पर ये भी सुनते, बहू ने कुछ अपने पति को खिला दिया जो माँ बाप का ध्यान ही नहीं रखता है, और उनको एकदम जैसे कि फेंक दिया, जैसे हालत कर दिया है। है ना समाज में ऐसे किस्से आपके सामने भी या नहीं है? है ना? तो किस पर भरोसा करेंगे? परिवार वालों के ऊपर भी भरोसा करना मुश्किल हो गया है। भगवान ने जब हमें कहा तो भगवान तो जानता है ना समय कौन सा चल रहा है, इसलिए कहा। इसलिए करना न करना आपके ऊपर है। भगवान कोई कंपल्शन नहीं करता है, कोई जबरदस्ती नहीं करता है, समय का एहसास करा देता है। नहीं करेंगे वो समय का शिकार बनेंगे, जो करता है वो पाता है ना? इसलिए जो भी नियम यहाँ बताए गए हैं, भगवान के द्वारा बताए गए हैं, उसमें कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी अपनी वृत्तियों को सप्रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन समझदारी से उन नियमों को जीवन में अपनाते हैं। और इसीलिए वो बहुत नॉर्मल जीवन जीते, वो एबनॉर्मल नहीं है। और इस दुनिया के अंदर एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने के बाद वो नॉर्मल जीवन जीते हैं, है ना? लेकिन तब फिर ये प्रश्न आता है कि ये संसार कैसे चलेगा। भगवान के पास उसकी भी विधि है। आज से 2000 साल पहले क्राइस्ट का जन्म कैसे हुआ था? अगर एक वर्जिन मेरी बिना किसी भोग बल के क्राइस्ट को जन्म दे सकती है, कन्या थी ना, उसको तो किसी ने भ्रष्टाचार नहीं कहा। मदर मेरी के रूप में आज भी हम उसकी पूजा करते हैं। कौन सी शक्ति थी 2000 साल पहले? इसी तरह शास्त्रों में बताया गया है पांडव कौरवों की उत्पत्ति कैसे हुई थी, मंत्रों के बल से। यानी संसार में एक समय ऐसा भी था जब मंत्रों के बल से उत्पत्ति होती थी। पांडु धृतराष्ट्र विदुर की उत्पत्ति कैसे हुई थी? दृष्टि के बल से उत्पत्ति हुई थी। श्री कृष्ण की उत्पत्ति कैसे हुई थी? योग बल से। इसीलिए उसको योगेश्वर कहा कि जिसकी उत्पत्ति भी इतनी पवित्र विधि से उत्पत्ति हुई है, इसीलिए तो वो महान पवित्र आत्मा है। इसीलिए तो आज इतनी पूजा उसकी होती है, क्योंकि उसके जैसा परम पवित्र कोई आत्मा इस संसार में नहीं हुआ है। लेकिन तब भी माना संसार में समय प्रति समय उत्पत्ति का रहस्य अपना रहा है, हर बार एक ही प्रकार का नहीं रहा है। ये तो कलयुग के अंदर जब आत्माओं में ताकत नहीं रही तो भोग बल को एक माध्यम बना दिया, लेकिन सदा काल ये विधि से उत्पत्ति नहीं रही है। इसीलिए भगवान कह रहा है, लेकिन तब भी मनुष्य कहता है क्या क्या सबूत है कि पवित्र विधि से भी उत्पत्ति होती है। ईश्वर जानता था कि कलयुगी मनुष्य ना हर बात में सबूत जरूर मांगता है ना। इसलिए आज भी प्रकृति के अंदर एक पक्षी को रखा है, मोर का पक्षी, जो आज भी पवित्र विधि से उत्पत्ति करता है। इसीलिए तो श्री कृष्ण के ताज में भी मोर का पंख लगाया जाता और किसी पक्षी का पंख नहीं लगाया जाता है, क्योंकि पूरे 5000 साल में ये एक ही पक्षी है जो आज भी पवित्र विधि से उत्पत्ति करता है। इसलिए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि ये संसार कैसे चलेगा। ये संसार कैसे चलेगा उसका प्लानिंग ईश्वर के पास है ही है ना। हमें तो सिर्फ उसने जो कहा है उसको मानकर चलना है, बाकी करना नहीं करना ये आपके ऊपर है। आपके पास भी विवेक है, आप लोग समझदार हैं। अगर भगवान की बातों को समझ सकते हैं तो आने वाले समय में सुरक्षित रहेंगे। लेकिन अब किस्मत आपके हाथ में है, ठीक है ना। किस्मत, किस्मत कैसे बनती है? दो शब्द से बना है ये शब्द, किस्मत। किस्मत पर चलेंगे हा? अब यहां से आपके सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता जो ईश्वर की मत पर चलने वाला और सतयुगी सृष्टि का के तरफ ले जाने वाला, और दूसरा रास्ता दुनिया का, जो समय का शिकार बनने वाला रास्ता। अब किस रास्ते पर चलेंगे ये आपके हाथ में है। भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे या दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, इस रास्ते पर चलना है। अब जो करना है वो आपके ऊपर है, उसके लिए कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, आपको यहाँ आने के लिए भाइयों ने बहनों ने कई बार निमंत्रण दिया होगा, चलो माउंट आबू, चलो माउंट आबू। हर बार आपने क्या कहा था? बहन जी ऊपर वाले की मर्जी होंगी तो आ जाएंगे, यही कहा था ना। तो अब जो आए हैं किसकी मर्जी से आए हैं, अपनी मर्जी से या ऊपर वाले की मर्जी से? ऊपर वाले की। तो अब यहाँ से जाएंगे तो किसकी मर्जी पर चलेंगे, ऊपर वाले की या अपनी मर्जी पर? अगर ऊपर वाले की मर्जी पर चलना है तो वो तो बता दिया क्या है उसकी मर्जी, और उसकी मर्जी पर चलेंगे तो फायदा ही फायदा है, ठीक है ना। अंत में कहानी सुनाना चाहूंगी कि एक बार नारद जी घूमते घूमते भगवान के पास पहुंच गए। भगवान एक डायरी देख रहे थे। नारद जी ने पूछा, भगवान क्या देख रहे हो? भगवान ने कहा, ये स्पेशल डायरी है। क्या लिखा है स्पेशल डायरी में? तो भगवान ने कहा, इसमें कुछ नाम लिखे हैं। किसके नाम लिखे हैं? तो भगवान ने कहा, इसमें उनके नाम लिखे हैं जो भक्त मुझे बहुत याद करते हैं। अच्छी बात है। नारद जी को जिज्ञासा हुई, मैं डायरी देखूं, भगवान मेरा नाम तो पहला नंबर लिखा होगा क्योंकि मेरे जितना तो कोई याद नहीं करता है। भगवान ने कहा, तेरा नाम तो सबसे पहला नंबर है, तेरे जितना तो कोई मुझे याद नहीं करता है। नारद जी को फिर भी तसल्ली नहीं हुई, कहा मैं डायरी देख सकता हूँ? कहा देखो। देखा, खुद का नाम पहला नंबर देखा, बड़ा खुश हो गया, है ना। आगे देखने लगा किस किस का नाम भगवान ने लिखा है, ढूंढने लगा हनुमान जी का नाम कहाँ है इसमें। देखा तो सारी डायरी में हनुमान जी का नाम ही नहीं था। अब नारद जी का तो काम था जलाना, डायरी भगवान को सौंपी और निकले ढूंढने हनुमान जी को। देखा तो एक वृक्ष के नीचे बैठे हनुमान जी राम नाम जप कर रहे थे। नारद जी ने जाकर कहा, ये ढोंग बंद करो। कहा क्यों? कहा भी मैं भगवान की डायरी देखकर आया हूँ जिसमें भगवान ने उनके नाम लिखे थे जो उनको बहुत याद करते हैं, और आपका तो नाम ही नहीं था वहां पर। अब हनुमान जी कोई जलने वालों में से थोड़ी थे। कहा अरे, हम भगवान की डायरी में नाम लिखवाने लिए थोड़ी याद करते, हम तो उसके दिल में रहते हैं, है ना। नारद जी क्या कहते हैं? फिर घूमते घूमते चले, कुछ दिन के बाद फिर भगवान के सामने आए। देखा भगवान एक छोटी सी डायरी देख रहे थे। पूछा, भगवान आज क्या देख रहे हैं? भगवान ने कहा, ये मेरी स्पेशल, मेरी पर्सनल डायरी है। पर्सनल डायरी में क्या लिखा है? तो भगवान ने कहा, इसमें भी कुछ नाम लिखे हैं। किसके नाम लिखे हैं? तो भगवान ने कहा, इसमें उनके नाम लिखे हैं जिनको मैं बहुत याद करता। नारद जी ने कहा, मैं डायरी देख सकता हूँ? कहा देखो। तो उसमें सबसे पहला नाम हनुमान जी का था, नारद जी का नाम ही नहीं था, है ना। कहने का भावार्थ, आप सबका नाम कौन सी डायरी में है पता है? पर्सनल डायरी में। भगवान को याद करने वाले दुनिया में बहुत है, लेकिन भगवान जिनको याद करे वो कोटों में, कोई कोई में भी कोई विरले आप हो जो यहाँ तक पहुँच गए। इसलिए कहा, आप इतने महान भाग्यशाली हो जो भगवान ने याद किया और आप यहाँ पहुँचे। तो भगवान जिसको याद करे उसका भाग्य कितना होगा। यानी नई दुनिया का जो कारोबार भगवान चलाते हैं ना, वो इलेक्शन से नहीं चलाते, सिलेक्शन से चलाते हैं। उसने आपके अंदर जरूर कोई ना कोई ऐसी खूबी देखी होगी जिस कारण उस नई दुनिया के लिए आपको सिलेक्ट तो कर लिया, लेकिन अब इस सिलेक्शन में रहना है या निकल जाना है वो आपकी मर्जी होगी। ठीक है, अभी फिर भगवान को उलाना नहीं देना कि भगवान तुम मुझे भी सिलेक्ट करके देखता था, मैं भी कोई कम थोड़ी था। लेकिन एक बात याद रखना, आप में से कई ऐसे भी होंगे जो आने वाले नहीं थे, दूसरे की टिकट पर पहुंच गए, है ना। मान भाग्यशाली तो वो, क्योंकि भगवान ने सिलेक्ट किया था, भगवान ने आवाज लगाई थी तो सब काम भी पूरा हो गया और दूसरे की टिकट भी मिल गई, आप पहुंच गए। और जो आने वाले थे उनको कोई जरूरी काम आ गया, रुक गए। लेकिन अब यहाँ से जाने के बाद वो नारद वाला काम नहीं करना कि जिसकी टिकट पर आप आए उसको कहो तू तो भगवान की सिलेक्शन में है ही नहीं, ये काम नहीं करना। उसके लिए भी यही पुरुषार्थ करना, वो भी यहाँ तक पहुंच जाए, कम से कम भगवान की सिलेक्शन की लिस्ट में आ जाए। ठीक है ना। तो इसीलिए ये है आज का सत्र, काल चक्र का गुह्य रहस्य, समय की पुकार है। आत्मशुद्धिकरण करो, योगी बनो, पवित्र बनो। 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे।
पवित्रता के हे मंत्र दाता, पवित्रता के हे मंत्र दाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों, चल रहे हैं सन्मार्ग पर अब इंसान लाखों।
पवित्रता के हे मंत्र दाता हम पर तुम्हारे एहसान लाखों।
शिक्षा से चल रहे हैं सन्मार्ग पर अब इंसान है।